पुराणों में शास्त्रों में बातें आती हैं और हिंदू पुराण और शास्त्र में मंत्र की महिमा आती है। इतना ही नहीं है, जो भगवान कृष्ण को, राम को, शिव को नहीं मानते ऐसे ईसाई, पारसी, यहूदी, मुसलमान, उनके भी हाथों में माला तुमने हमने देखी है और वे भी माला घुमाते हैं। बौद्ध भी घुमाते हैं, कई लोग कमर को माला बांधते हैं और उनमें भी कई बड़े बड़े धनाढ्य लोग, पढ़े लिखे लोग भी मंत्र जाप करते हैं और गधे हाँकने वाले, घोड़े हाँकने वाले भी बुद्धिस्ट हमने मंत्र जाप करते उनको देखा माला पर। तो इसकी मंत्र जाप की व्यापकता और सबको अपने कल्याण में सहाय देने वाली व्यवस्था है। मंत्र मन तर जाए उसको मंत्र बोलते हैं, महात्मा की भाषा में। अंतर में मनन करो उसको मंत्र बोलते हैं, ये युक्ति वालों की भाषा में। और मंत्र के लिए पुराणों में आता है, अग्नि पुराण कहता है, जकार जन्म विच्छेद, पकार पापनाशक, तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। जप का मतलब है जप के जकार से जन्म मृत्यु को हटाने का, पकार से पाप ताप को निवृत्त करना, ऐसा अर्थ अग्नि पुराण में आया। रामायण में कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाश। ये भक्ति का पांचवा सोपान है। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति छल कपट छोड़ के गुणगान करे, और पांचवी भक्ति के मंत्र जाप। भक्ति का पांचवा सोपान माना जाता है। इस मंत्र को जपना, मनमाना जपना, वो भी बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन गुरुदत्त जो मंत्र होता है उसकी विशेषता बढ़ जाती है। जैसे खेत में आप ठीक विकसित दाने डालते हो तो आपके ठीक विकसित और दाने बनते हैं, अर्ध विकसित खेत में दाने डालते हो तो खेत भी अर्ध विकसित दानों वाला होगा, होगा ना। तो जिन्होंने मंत्र जाप अपने गुरुदेव से लिया है, अपनी साधन भजन करके मंत्र जाप करके मंत्र को विकसित किया है, ऐसे पुरुषों के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो जैसे किसान को विकसित बीज मिले तो उसकी खेती में मदद होती है। ऐसे भी कुछ न बोए तभी भी बरसात होने से हरियाली तो हो जाएगी, लेकिन खड़ होगा, कचरा पट्टी होगा, मिला जुला होगा, पुराने जो दाने पड़े हैं जो भी हो, कहीं तिल उगेंगे तो कहीं ज्वार के दाने दिखेंगे, कहीं कुछ दिखेंगे। तो जिन्होंने मंत्र जाप किया है और जिनका सिद्ध हुआ है मंत्र, जो सिद्धाई को पहुंचे, उनके द्वारा अगर राम राम मिल जाता है तो जुल्हा कबीर में से संत कबीर प्रकट हो जाते हैं, बाल्या लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि प्रकट हो जाते हैं, महामूर्ख में से महाकवि कालिदास प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु दत्त मंत्र की ये महिमा है। इसके कई दृष्टांत हैं और गुरु दत्त मंत्र हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। रामानंद स्वामी का शिष्य ने कोई गलती किया, चमारों के घर की भिक्षा खिला दिया लापरवाही के कारण। कथा लंबी है। गुरु को लगा कि आज मेरा मन ध्यान भजन में नहीं लगता, अरे कहाँ से लाया था रोटी, बोले गुरु जी देर हो गई थी तो और लोगों से मिला नहीं, तो जो चमारों को ब्याज पे पैसा देता है उस धनाढ्य चमार के घर से, वो भी बेचारा गरीब चमारों का खून चूसने वाला चमार था, तो उनके यहाँ से लाया। तो ये अशुद्ध शोषण किया हुआ धन का अन्न खिलाया, मेरा मन व्यर्थ का अन्न खाने से व्यर्थ के विचारों में लगा है, तूने मेरा भजन में विघ्न डाला, जा तुझे चमार के घर जन्म मिलेगा। वही ब्रह्मचारी दूसरे जन्म में रघु चमार के यहाँ जन्मा और उसका नाम रहीदास पड़ा, लेकिन गुरु का मंत्र तो दिया हुआ था, बचपन में ही उसका वो गुरु मंत्र उभर आया और सहज में जप होने लगा। संत तुलसीदास रहीदास के दर्शन करने में और मीरा ने रहीदास को गुरु माना और मेवाड़ को झुमाया और अकबर जैसा मीरा के चरणों में जाकर शांति पाता। शांति की बड़ी भारी कीमत है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है मन बुद्धि पर। सूर्य ग्रहण के समय हजारों नहीं लाखों लोगों का चित्त विक्षिप्त हुआ था और हमारे चित्त में जो सहज में आनंद रहता था उसमें भी हमने देखा कि ग्रहण के समय जो सहज प्रसन्नता रहती थी उसमें थोड़ी कमियां। हम तो दरवाजा बंद करके बैठ गए अपने स्वरूप में जहाँ ग्रहण का प्रभाव ही नहीं पड़ता और आप लोगों को बार बार मंत्र जाप उच्चारण करते कराते थे तो ग्रहण की अशांति जो वातावरण में थी उद्वेग। वैज्ञानियों ने भी कहे कई पागल लोग या कमजोर मन वालों पर ऐसी ऐसी असर हो गई। उनकी तो दिखाई देती है, बाकी तो असर तो सब पे होती। तो उन ग्रह नक्षत्रों के उपद्रवों की असर भी मंत्र के द्वारा हटाई जाती। मुक्ति ही देता है ऐसी बात नहीं है, मंत्र जाप से रोग भी मिटाए जाते हैं, विघ्न भी हटाए जाते हैं और विपरीत परिस्थितियां भी बदली जा सकती हैं। मनोवांछित फल और मनोवांछित परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं। मंत्र में इतनी सारी शक्ति। मंत्र के शब्दों में अर्थ विस्तृत न हो तो कोई बात नहीं, शब्दों की रचना ऐसी है कि आपके अमुक अमुक केंद्र पर उसकी इफेक्ट करे और शक्ति का संचार हो। मंत्र जपने में क्या काम बनता है भीतर? बोले हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पर तो असर पड़ता है, सूक्ष्म शरीर की तीनों ग्रंथियां और छह चक्रों पर मंत्र जाप का प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला चक्र है जिसमें काम क्रोध भय घृणा ईर्ष्या रहती है तो पहले चक्र पर असर पड़ेगा तो काम का कुछ अंश घटकर राम के रस में झुकेगा मन, क्रोध क्षमा में बदलेगा, भय निर्भयता में आएगा। तो एक चक्र पर मंत्र का असर पड़ता है तो ऐसे सब चक्रों की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी गंदगी भी है और जप करने से अपनी अपनी विशेषता होती है। तो जप करने से छह चक्रों पर सुंदर शुभ असर पड़ता है। डॉक्टर लेजेरिया ने तो लिखा कि वही अन्न नली पर अच्छा असर पड़ता है फलाने पर, लेकिन इतना ही नहीं है, वो तो खाली स्थूल शरीर पर बोला, लेकिन सूक्ष्म शरीर पर भी होता है, कारण शरीर पर भी होता है, पांचों कोशों पर, षड चक्रों पर, तीनों ग्रंथियों पर मंत्र जाप का असर होता है। षड चक्र, पांचों कोश और षोडश मात्राओं पर भी। और महाराज आपको क्या बताएं, इस मंत्र का जाप अपनी नाड़ियों पर भी सुंदर असर पड़ता है और 84 मुख्य नाड़ियां उन पर असर पड़ता है। मंत्र जपने में और मंत्र की सिद्धि में चार बातों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मंत्र का जो शब्द हो, शब्द शक्तिशाली हो, शक्ति पैदा करने वाला हो। मंत्र उसी लिए बनते हैं जो शब्दों की सेटिंग होती है जिससे शक्ति पैदा हो, उसके अर्थ ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होते। जैसे कई बीज मंत्र आते हैं, हुम फट रीम क्लीम मिंग, कोई विशेष अर्थ नहीं है लेकिन शक्ति पैदा करने के लिए उनकी व्यवस्था है। तो एक तो शब्द शक्ति, दूसरा मंत्र सिद्धि में मानसिक एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। व्यग्र चित्तो हतः जपः, चित्त व्यग्र हो और जपते रहे, नाश्ता भी करते गए और माला भी घुमाते गए, इधर उधर झांकते गए, तो नहीं घुमाने से तो ठीक है लेकिन जो उसका बढ़िया परिणाम आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो एक शब्द शक्ति दूसरी मानसिक एकाग्रता की इसमें अनिवार्य आवश्यकता है। मानसिक एकाग्रता के उपाय सत्संग में बताए जाते हैं, उसको देख लेना। भगवान का किसी भी इष्ट का प्रिय का चित्र हो, इष्ट का, भगवान का, देवी का, देवता का, गुरु का, उसके तरफ एक टक देखते रहे, एक टक देखते रहे। ध्रुव तारे की तरफ एक टक देखा, तीन दिन में परिणाम सुना था। जलाशय में एक टक देखते रहे। मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के उपाय खोज लिए, तो एक तो शब्द शक्ति, दूसरा मानसिक एकाग्रता, तीसरा चारित्र श्रेष्ठ। चरित्रहीन होगा, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, दुराचार करेगा, इधर उधर देख के करना पड़ेगा, मन दुर्बल हो जाएगा। तो लोग जब तो करते, लेकिन इन बातों पर अपन ध्यान नहीं देते, इसलिए जब का चमत्कार नहीं दिखता, सामर्थ्य नहीं दिखता और भीख मंगे रह जाते हम लोग। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि एकाग्रता पर ध्यान देना चाहिए, चरित्र की श्रेष्ठता पर, और अटूट श्रद्धा। मंत्र मिला है तो ये होके रहेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, नहीं। बाल्या लुटारा को मरा मरा मंत्र दे दिया और श्रद्धा अटूट, एकांत में बैठा, कहीं इधर उधर झांकने का, आकर्षण करने का कोई दुर्भाग्य मिला नहीं। लग गए तो षडचक्र भेदन हो गया, त्रिकाल ज्ञानी हो गए। कहाँ तो लुटेरा था और कहाँ त्रिकाल ज्ञानी। आज मेरे को सुरेश ने बताया, सुरेश बापू के, बड़ा एक ज्योतिषी था दिल्ली का, उसने मेरे को बताया, सुरेश कहता है कि तुम्हारा सत्संग में तो ग्रामर का भी ठिकाना नहीं। मेरे को ये बात दूसरे लोगों ने बताई, जहाँ है बोलना है वहाँ भी था रख देते, और जहाँ थे बोलना है वहाँ भी था रख देते सुरेश बाप। फिर भी इतने लोग उनसे प्रभावित होते, आनंदित होते, उत्साहित होते, तो क्या कारण है? तो लोगों ने खोजा, फिर उन लोगों में से किसी लोगों ने आके कहा कि तुम्हारे पास केवल गुरु भक्ति और गुरु कृपा ही तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी रक्षा कर रही, नहीं तो तुम कभी के फिक जाते, कभी के फिक जाते। बड़े बड़े महामंडलेश्वर आचार्य पढ़े लोग, उनके पास 50 आदमी बैठते आजकल सत्संग, कोई कई जगह पर ऐसा देखते। लेकिन तुम्हारी सत्संग की इतनी मांग है तो उसके पीछे गुरु। दूसरी बात है कि माया तुमको झपेटने के लिए चहु तरफ तैयार बैठी, लेकिन तुम्हारी गुरु भक्ति, गुरु कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। नहीं तो यश, वाहवाई, ये वो सब गिरने के साधन बहुत मिल जाते हैं फिसलने के। तो श्रद्धा जो है हमारी रक्षा करती है। सभी आचार्यों ने, सभी शास्त्रों ने और सभी उच्च ग्रंथों ने तो कहा है, वेद ने भी, तीन वेदों में भी श्रद्धा की महिमा आई। अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, और अंतरात्मा की जागृति तर्क से नहीं होगी। ईश्वर अगर तर्क का विषय होता तो तार्किकों की जेब में होता, वकीलों के काले कोट में होता, न्यायाधीशों के कोट में होता। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम, ये दो बात श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहां भी वही दो बात आई, श्रद्धा और चारित्र की श्रेष्ठता। मानसिक एकाग्रता, तत्परता होगी तो एकाग्रता आएगी, और शब्द शक्ति। इन चार बातों के साथ जो मंत्र जाप करते हैं, उनको मंत्र की महानता का एहसास चंद दिनों में, चंद सप्ताह में हो जाता है। साधक को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भगवत कृपा, गुरु कृपा का आवाहन करके मंत्र जपे, ताकि छोटे मोटे विघ्न दूर रहे और श्रद्धा का प्रागट्य। श्रद्धा के कारण हमारी सुरक्षा रहे। कभी कभी हमारा जप तप बढ़ता है तो आसुरी शक्तियां हमको प्रेरित करके, नीच कर्म करा के हमारी शक्ति क्षीण कर। कभी कलयुग भी हमें कुमार्ग पे अथवा तो श्रेष्ठ पुरुषों से दूर करने में प्रेरित कर देता है। जयराम जी की। इसलिए कबीर जी ने गाया होगा कि संत के दर्शन दिन में कई बार करो, कई बार नहीं कर सकते तो एक बार कर लीजिए, दो बार कर लीजिए, दो बार नहीं करते तो फिर सप्ताह में कर लीजिए, पाक पाक कर लीजिए, मास मास कर दीजिए आदि आता है। तो भगवत दर्शन, संत दर्शन इन विघ्नों को हटाने में बड़ी मदद करता है। दूसरी बात, आप जब जप करें तो स्पष्ट उच्चारण करें। तीसरी बात, अपने गुरु से कभी कुछ छुपावे नहीं, चाहे कितना बड़ा पाप और अपराध हो, छुपावे नहीं। गुरु पूछे उसके पहले गुरु को कह दे, जल्दी हृदय शुद्ध होगा, जल्दी सहायता मिलेगी। ना बापू आओ नहीं, ना बापू तूटी चाहिए टीचे मरो पछी। गुरु से छुपावे नहीं। जो हमारे कम से कम 80-90 करोड़ आदमी में एक आदमी तो ऐसा मिले जहां हृदय खोल सको, ऐसे पुरुष को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारा सचमुच में हित चाहते। चौथी बात, मनसा वाचा और कर्मणा, निंदनीय आचरण से बचने का प्रयत्न करे, बचे। पांचवी बात, गुरु की आज्ञा में अपना कल्याण माने। ऐसे गुरु की आज्ञा में कल्याण मानने वाले में शिष्यों में चार प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं कि गुरु के भाव को समझ के उस प्रकार से काम करने, सेवा करने, चिंतन करने लग जाएंगे। दूसरे ये होते हैं कि गुरु का संकेत मिलने पर काम करते हैं। तीसरे वे होते हैं कि गुरु की आज्ञा मिलने पर काम करते हैं। और चौथे वे होते हैं कि गुरु की, गुरु तो कहता रहे पण आपड़े तो ठीक, हाँ जी करे राखवानु, मग्नु नाम मरी नहीं पाड़वानु। ऐसे लोग बुद्धिमान होने पर, श्रद्धालु होने पर भी इस बात में धोखा खा जाते तो उनकी यात्रा भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। छठी बात है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाए लेकिन चित्त को उद्विग्न न होने दे, समय बीत जाएगा, परिस्थितियां सुधर जाएगी, बदल जाएगी, अपना साधन भजन न छोड़े। विपरीत परिस्थितियां आवे तो साधन भजन और श्रद्धा और करे, नहीं तो विपरीत परिस्थितियां हावी हो जाएगी। सातवीं बात है कि संसार को स्वप्न तुल्य माने, ईश्वर की लीला माने अथवा ब्रह्मवेता गुरु का विवर्त या लीला माने, ऐसा चिंतन करे। संसार को सत्य न माने, स्वप्न माने, ये मदद देगा जापक को। आठवीं बात, गुरु पर एक निष्ठ हो जाए। गुरु करने में तो 10 बार विचार करे, कोई टूणा फूणा वाला गुरु में न फंसे, इधर उधर वाले में न फंसे। जो गुरु गीता में गुरु के लक्षण बताए उस प्रकार के गुरुदेव को खोज ले, फिर एक बार सतगुरु से दीक्षा ले तो इधर उधर भटके नहीं। सुपात्र मिला तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। एक निष्ठ हो जाए। गुरु दीक्षा लेने के बाद भी वो सिविल सर्जन की बात देखा ना, कल सुना, मंत्र तो मेरे पास से ले गया, फिर उसको कुछ हुआ कि ये महाराज कुछ ऐसा दे देंगे कि छू मंत्र हो जाएगा, और महाराज ने ऐसी श्रद्धा तोड़ दी और ऐसा छू मंत्र कर दिया को बेचारा उद्विग्न हो गया, अशांत हो गए। अभी भी बैठे होंगे कि गए भगवान जाने लिखे, बैठा है बेचारा। लो तो इधर उधर ना भटके। जैसे पतिव्रता पति के साथ फेरे फिर लिए, फिर दूसरा पति खोजती है तो वो पतिव्रता नहीं है, व्यभिचारिणी है। जयराम जी की ऐसे वो शिष्य नहीं है, व्यभिचार हो गया शिष्यत्व में, तो फिर उपद्रव होता है। सतगुरु को खोज ले, एक बार सतगुरु करे फिर उसका त्याग करना, इसे गुरु न करना अच्छा है, भवजाल में फंसे रहना और मरना जन्मना अच्छा है, लेकिन एक बार सतगुरु कर लिया तो उसका त्याग ना कर। निश्चित समय पर निश्चित जगह पर जप ध्यान करे तो उसका विशेष लाभ होता है, और जप ध्यान के बाद थोड़ी देर उसी जगह पे बैठा रहे, कुछ न करे, आराम करे, विश्रांति करे, तो जप ध्यान से जो भाव बने हैं वो गहरे उतरेंगे। जिस माला पर जप करता है उस माला का मूल्य समझे, उस माला को जहां तहां पटके नहीं, जहां तहां फेंके नहीं, गंदी जगह में ले न जा, और रोज नहाता है तो ऐसे माला को भी नहला दे। गुरु मंत्र मिलने के बाद एक बार उस माला का पूजन कर ले ताकि उसका सुषुप्त चैतन्य जागे। घड़ियाल रख के भी जप कर सकते हैं, लेकिन घड़ियाल के सामने देखते देखते जप करना, कितनी संख्या करेंगे उसका पता नहीं, इसलिए माला जो प्राचीन परंपरा है वो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छी है, ऑल्ड इज गोल्ड जैसा है इस माला जाप में। तो दूसरा ये भी फायदा होता है कि उंगलियों के अग्र भाग जो है उस पर माला के दानों का स्पर्श होता है, तो एक्यूप्रेशर सिस्टम का हमको थोड़ा बहुत नाड़ियों में लाभ बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। माला जपते जपते माला का दाना घिस गया या माला टूट गई तो दूसरा दाना नई माला का तोड़ के उसमें डाल दे, जिस माला पे जप किया वो माला प्रभावशाली होती है। जप की संख्या जितनी बढ़ती है उतना लाभ ज्यादा है, लेकिन संख्या के साथ साथ उच्चारण और एकाग्रता को भूलना नहीं चाहिए। तोते की नहीं रटता जाए, मशीन की नहीं, नहीं जप करते जाए उसके अर्थ में तल्लीन होता जाए, तो जितना जितना तदाकार तल्लीन होगा उतना उतना जापक की आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होगी। वो जप तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को और तुम्हारे रक्त के कणों को झकझोरेगा, श्वेत कण डेवलप करने में मदद करेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगा। लेकिन केवल रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के भाव से जप न करे, तो भगवत प्राप्ति के भाव से करे, भगवान के लिए कर रहे। और जब जब जप करने की इच्छा पैदा हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने मुझे याद किया अथवा गुरु ने मुझे प्रेरणा की, वाह वाह अहो भाव कर। और जप का फल संसारी तुच्छ चीजों में नष्ट ना करे, हीरे मोती बेच के कंकड़ पत्थर ना खरीदे। संसारी चीजें तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध से मिल जाती है। और जापक जब थोड़ा जप विशेष करता है तो मानो रेलवे में जाना है, वो टिकट नहीं मिलती, चलो जाते हैं, अपने विषय में क्या चिंता करना, स्वाभाविक। तो उसकी पहले चिंता करके या रिजर्वेशन करके भी कभी कभार कष्ट से जाता था, और जापक अब आराम से मिल गया। जो काम असंभव सा था वो स्वाभाविक संभव हो गया, जो घृणा करते थे वो प्रेम करने लगेंगे, जो बॉस डांटता था वो अब सलाह ले रहा है और अनुचर जैसा काम कर रहा है। ये सब बातें हो तभी भी ऐसी चीजें मिलती रहे, ऐसी बातें होती रहे, ये भावना ना करें। कभी कभार विघ्न बाधा आए तो चलो मैं ये जप करूं, इन विघ्न बाधाओं को जप से गुरु मंत्र से हटाऊं, नहीं, गुरु मंत्र से विघ्न बाधाओं को हटाने की अपेक्षा गुरु मंत्र के अर्थ में तल्लीन हो जाओ, विघ्न बाधा अपने आप प्रकृति की व्यवस्था से या तो हटेंगे या तो तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़े तो और बढ़िया है। इस प्रकार के नियमों का पालन करके ख्याल में रख के जो जापक जप करता है तो उसे लाभ होता है। और एक विशेष बात है, हम कहे गए कि चार बातों पर ध्यान देना चाहिए जप में। एक तो शब्द शक्ति होती है, दूसरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाना चाहिए, तीसरा चरित्र श्रेष्ठ, हीन चरित्र से बच जाना चाहिए, नीच कर्म छोड़ देना चाहिए। हम कह गए, लेकिन जो नीच कर्म की आदत है हम लोगों में, किसी को दारू की, अभी आप लोगों में तो नहीं है, चाय की या और भी जिसकी जो आदत है नीच, वो उससे छुपी हुई नहीं, चाहे पहले थी या अभी है या बाद में, तो उनको कैसे मिटाएं? तो सुबह उठे ना धोकर पूर्व दिशा के तरफ बैठ जाए, हो सके तो पद्म आसन बांधे अपने कमरे में, पद्म आसन बांधे और गहरा श्वास ले जितना ले सके, और फिर जो बुरी आदत है उसको मानसिक ढंग से अपने सामने लाए। मानो मेरे में कोई आकर्षण है, मैंने श्वास लिया, अब अपने को अपने जीवन में ये नीच आकर्षण नहीं रहेगा। हरि ओम, हरि ओम, ओम ओम। फिर उतनी देर शांत हुए, फिर हरि ओम की अथवा ओमकार की गदा उठाई, अपनी बुरी आदत बुरे आकर्षणों को लगाया। और आज का दिन तो मैं इस आकर्षण से, बीड़ी का आकर्षण, चाय का आकर्षण, स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण, लोभी को पैसे का, जो भी अपने को खटकता है, जो अपनी मानसिक शक्ति दुर्बल करता है, जो अपना चरित्र दुर्बल करता है, ऐसा जो भी अपने में गलती हो, दुनिया के सब गुरु आ जाएं, लेकिन आप अपने गुरु बनने में जब तक सहाय नहीं दोगे अथवा गुरु के ज्ञान को अपने भीतर सहाय नहीं दोगे तो दुनिया के गुरु क्या करेंगे, भगवान खुद क्या करेंगे। भगवान के बेटे भगवान की बात नहीं मानते थे, सामने पड़ जाते थे तो भगवान कृष्ण क्या करे, फिर लड़ो मरो, भगवान के देखते देखते आपस में दारू पिए और मरे लड़े। मूरख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम, जो आज्ञा का आदर्श का पालन नहीं करेगा तो ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले तो भी क्या। गुरु के बिना गत नहीं है, लेकिन शिष्य की सहमति के बिना भी तो गत नहीं है, जयराम जी की, ये भी तो इतना ही है सत्य। मास्टर कितना भी बढ़िया हो लेकिन विद्यार्थी पढ़े नहीं तो मास्टर क्या करे, और विद्यार्थी कितना भी बढ़िया हो और मास्टर ही ना मिले और किताब ना मिले तो क्या पढ़ेगा। तो किसान बड़ा पुरुषार्थी हो, सूर्य नारायण का प्रकाश न मिले तो क्या खेती करेगा, पानी न मिले तो क्या खेती करेगा। पानी और सूर्य का प्रकाश खूब मिले और किसान चुपचाप बैठा हो तो क्या खेती होगी। तो साधक रूपी किसान को चुपचाप नहीं बैठना है, और गुरु कृपा को और भगवत कृपा को भी साथ में लेकर साधक को आगे बढ़ना चाहिए। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। जप से जय प्राप्त होती है, विकारों पे भी जय प्राप्त होती है, रोगों पर भी जय प्राप्त होती है, निर्धनता पे भी जय प्राप्त होती है, दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त होती है, दुराचार पर भी विजय प्राप्त होती है, गरीबी पे भी विजय प्राप्त हो जाती है। जप से जय मिल जाता है, ये शास्त्र वचन है, किसी की उक्ति या किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, शास्त्र वचन। जापेन जापेन जय मापनोति, जप सिद्धि फलम तथा हीन कर्म त्यजेत सर्वम गर्हित स्वस्थानमेव च। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जप अनुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदनीय स्थान का त्याग कर दे, ऐसे स्थान पर जप करे कि मन लग जाए। मानो हम बंबई के फ्लैट में बैठ के जप करते हैं तो जितने जप करेंगे उतना ही फायदा हो, समझो 108 बार जप किया तो 108 बार जप का लाभ होगा। इससे किसी पवित्र शांत मंदिर में करते हैं तो उसे 10 गुना फायदा होगा, गौशाला में करते हैं तो और 10 गुना मतलब 100 गुना फायदा होगा। लेकिन गौशाला में अगर बैल बंधा हुआ है तो फिर जितना घर में फायदा होता है उतना ही होगा।